संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया विकराल विनाश खड़ा आगे
शांति। दोपहर का समय है, सुबह 3 बजे 3:30 से उठ हुए हैं, लेकिन बहुत मन में लगन है कि भक्ति करने आए हैं। और भक्ति करना माना, जैसे मैं कल भी आपको बता रही थी, अपने अंतःकरण को और भी ज्यादा स्पष्ट, अपने लिए स्पष्ट कर रहा है ना। देखो, हम जब देखते हैं मधुबन में आते हैं, यूं तो मधुबन में रहने वाले भाई बहनों से मिलते ही रहते हैं, कभी उनको मंच पर देखते हैं, कभी रूबरू मिलते हैं, लेकिन जब भट्टी में उनके सन्मुख हम आते हैं या वो हमारे सन्मुख आते हैं, तो हमें बाबा के हर बच्चे में इतनी कलाएं दिखाई देती हैं, और तब हमें मालूम पड़ता है कि सचमुच बाबा की कमाल है। तो ऐसे ही हमारे हैं, हमारे सामने बैठे हैं सतीश भाई। हम पहले पहले सतीश भाई का एक हाथ की ताली से हम उनका स्वागत करते हैं। सतीश भाई जो मधुर वाणी ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, आप सब जानते हैं। वैसे भी दुनिया में भी क्या होता है, जो लेखक होते हैं, गीतकार लेखक, उनके कभी कभी दूसरे नाम होते हैं, आपको पता ना, कई लोग दूसरे नामों से लिखते हैं। तो सतीश भाई भी जो है मधुर वाणी ग्रुप से ज्यादा जाने जाते हैं, ऐसा ही है ना सतीश भाई। आपने जो है 5,000 से भी ज्यादा गीत लिखे हैं। देखिए, कोई भी कार्यक्रम होता है और इनके शब्दों की रचना बड़ी सुंदर होती है। और हमने तो ये देखा है कि बाबा के घर में जो भी बाबा के बच्चे आए, भले उन्होंने स्थूल सेवाओं में बहुत कुछ अपना योगदान दिया, लेकिन स्थूल कर्मणा सेवा के साथ साथ बाबा ने अपने हर बच्चे में कोई ना कोई विशेष, एक गुण, विशेष क्वालिटी, विशेष एक विशेषता उसमें भर दी। इसी प्रकार जो हमारी पहचान सतीश भाई से जब से हुई, हमने इनको हमेशा किचन में, पांडव भवन के किचन में, वीआईपी किचन में, विशेष रूप से पेशेंट्स का भोजन वहां पर बनाते हुए, ये सारा संभालते हुए देखा। लेकिन साथ साथ आप देखिए, भोजन बनाते बनाते कितना उनका मनन मंथन चलता होगा, तब तो वो गीत लिख पाए। आज इतने गीत उन्होंने लिखे हैं, तो लगभग 40 साल से वो इस बाबा के ज्ञान में है और 35 ईयर से पांडव भवन में रहते हैं, और 20 साल उन्होंने किचन संभाली। दादियां, हमारे निर्वैर भाई और गुलजार दादी भी जब यहाँ पर होती थी तो हमेशा उनका खाना बनाना, देखना, ये आप ही सब किया करते थे। और उन्होंने अपने ही कलाओं को इतना निखार दिया बाबा के ज्ञान से, बाबा के साथ के सानिध्य से, कि आज उनके गीत है, बहुत सुंदर रचना करते हैं। अभी सुबह कहो और शाम को हाजिर है, इतने जल्दी वो कर लेते हैं। तो आज हमें उनसे खुद सुनने का मौका मिला है। और अपना जो आर्ट एंड कल्चर विंग है, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, आपने कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं, और आपकी विशेषताओं के कारण आपका विदेशों में भी जाना हुआ है। सूरज भाई के साथ आप दुबई, मॉरिशियस आदि कई स्थानों पर जाकर आपको भर्ती कराने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ है, और देश में भी कई स्थानों पर जाकर आप भर्ती कराते रहते हैं, और आज हमारे बीच में हैं। तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज का विषय जो हमारा है, घर मंदिर समान कैसे बने, उसको आप स्पष्ट करेंगे। प्रातः सतीश जी।
ओम शांति। सबसे पहले मैं आपको मधुबन में आने की और भट्टी की बहुत ढेरों बाप दादा दादियों और मधुबन निवासियों की ओर से ढेरों ढेरों धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाइयां देना चाहता हूं, बधाइयां स्वीकार करें। दूसरी बधाई है आपके हिम्मत की, उमंग उत्साह की और आपके श्रेष्ठ भाग्य की। और क्योंकि यहां पर पहुंचना और ये चांस मिलना, स्वस्थ रहना और भट्टी का आनंद लेना, इसका भी तो भाग्य होना चाहिए ना। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवान के घर में यहां भट्टी करने का अवसर मिला और आप निर्विघ्न होकर के यहां पहुंच गए हैं, वरना कितना चाहकर भी यहां नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आप अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वीकार करें। पुनः आपको इस भट्टी में विशेष अनुभव हो, इसलिए मैं एक बार और इस भट्टी की सफलता के लिए आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि आपकी ये भट्टी यादगार बन जाए, जो जीवन को इस तरह बना दे कि तमाम भट्टियों की आवश्यकता न पड़े। एक भट्टी ऐसी हो, जैसे कल शाम को बहन जी सुना रही थी, पांचों लक्ष्य बताया भट्टी का, रियल गोल्ड बनना है, सच्चा सोना बनना, मोल्ड हो जाना, राख कर देना संस्कारों का, स्वाहा हो जाना, परिवर्तित हो जाना है। बहुत अच्छे अच्छे लक्ष्य बनाए ना, तो निश्चित रूप से आपकी ये भट्टी यादगार बने। इस भट्टी को कुछ चीजें मैं आपको प्राइमरी चीज बता देना चाहता हूं जिस भट्टी से आपको लाभ हो। पहली ये कि आपको लक्ष्य बनाना है कि ये भट्टी आपकी अंतर्मुखता की भट्टी हो जाए। पहली भट्टी वालों से तो और अपेक्षा है कि जब तक आप मधुबन में हैं, जैसे ताली नहीं बजा रहे हैं, आप एक हाथ की ताली से कर रहे हैं, ये अंतर्मुखता की पहली प्रयोग है, पहली प्रयोगशाला है, बहुत अच्छा है। दूसरा, भोजन हो, सोना हो, चलते फिरते जब तक आप हैं, जितना आप मौन में रह करके इस अंतर्मुखी होकर के और प्रयोगशाला में बैठ के भट्टी करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। जैसा कमलेश बहन ने उस दिन कहा कि केवल मुख का मौन नहीं चाहिए, बल्कि और मन का भी मौन हो जाना चाहिए। मुख का मौन और मन का मौन दोनों साथ हो। अंतर्मुखता पहली स्टेप्स, बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ आपके मोबाइल और जो भी बाहर के फोन वगैरह जो भी आने वाले हैं, उन सब से जब तक आप तीन चार दिन यहां मधुबन में हैं, ऐसा रहिए कि जैसे कि हम दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं, बिल्कुल अलग आ गए हैं। मधुबन का शक्तिशाली वातावरण और आपके अंतर्मुखता की स्थिति, आपका मौन और मनन का दृढ़ संकल्प आपको नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई प्रेरणा और नए प्रकाश से आपको भर देगा। दूसरी बात, अंतर्मुखता के साथ साथ आपकी ये भट्टी आलस्य और अलबेलापन से मुक्त हो जाए। आलस्य का जरा भी नाम ना हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो शाम हो, जब आप बैठे, चाहे अमृत बेला हो, बिल्कुल मुक्त हो आलस्य से। मेरा इस विषय में व्यक्तिगत बड़ा अच्छा अनुभव है। जब मैं मधुबन में आया तो 6 महीने हमारे अच्छे नहीं बीते थे। 6 मास मैं बैठता था, पीछे बैठ जाता था, सेवा से मुक्त होता था तो, लेकिन इतना आलस्य लगता था कि लगता था सब तो जाग रहे हैं, मैं क्यों नींद आ रही है। और मैंने बचपन सुन लिया था ज्ञान में आने के बाद कि जो पाप है, जो बोझा होता है सिर पे बोझा, उनको ज्यादा नींद आती थी। तो मैंने कहा सारा पाप मैंने ही अपनी जिम्मेदारी ले लिया है क्या, ऐसा सोच में आता था, ख्याल आता था। लेकिन जब मैंने 6 महीने के बाद विश्लेषण किया कि निद्रा क्यों आती है, ये आलस्य क्यों आता है, जब से मैंने उसका विश्लेषण किया, मुझे एक प्रकार से वरदान मिल गया कि मैं योग में बैठूंगा तो नींद नहीं करूंगा, कभी भी याद में नींद नहीं करते, एक भी संकल्प, एक भी सेकंड हमारा वेस्ट न जाना चाहिए। इसलिए आलस्य और अलबेलापन से मुक्त होने का एक बड़ा अच्छा तजुर्बा हो गया। मैंने विश्लेषण किया, जैसे एक किसी से किसी का प्यार होता है लौकिक दुनिया में भी, तो रातों रात की नींद जो है उड़ जाती है। हम बहुत ज्यादा दावे से कहते हैं हमारा बाबा से बहुत प्यार है, गाने में भी गा लेते हैं वो बाबा हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना, यूं तो हम जानते हैं कि बाबा हमको ज्यादा प्यार करते हैं, उससे ज्यादा प्यार नहीं करते, लेकिन हम बहुत बाबा को प्यार करते हैं, लेकिन उसके प्यार में हमको नींद आ जाए ये बात तो ठीक नहीं लगती है। इसलिए जैसे बाहर की दुनिया में प्रेमी प्रेमिका का आपस में प्यार होता है, प्रेमी भूल जाते हैं, नींद भूल जाती है, सब उचट जाता है, खत्म हो जाता है। हम सचमुच यदि बाबा से प्यार में तल्लीन हो जाएं, लवलीन हो जाएं, तो हमारी इन आंखों में प्रेम के आंसू होना चाहिए, ना कि नींद के आलस के वाइब्रेशंस होने चाहिए। बाबा को याद करने का अर्थ केवल ये नहीं कि मैं आत्मा हूं और आप परमधाम में जा रहे हैं, योग लगा रहे हैं, तार जोड़ने में लगे हुए हैं। याद का अर्थ तो ये भी है कि आपकी शक्ल, आपकी सूरत, आपका चलन, आपका व्यवहार वो बताए कि आप योगी हैं, आप बाबा की याद में तन्मय हैं, लवलीन हैं, उनकी याद में चटक गए हैं और उसका प्यार इस तरह रच बस गया है कि इन नैनों में हमारे बाबा की सूरत और मूरत के अलावा कुछ भी याद नहीं आता। आज बाबा ने यही कहा, उसकी करंट आती रहे, बाबा मुझे देख रहा है और मैं बाबा को देख रहा हूं, वो मुझे निहार रहा है पल प्रतिपल, मैं कितना उसको देख रहा हूं, कितना मुझे उससे प्यार है, कितना प्यार है जरा देखें। इसलिए एक उदाहरण सामने रखिए, यदि सचमुच हमारा बाबा से प्यार है तो जब हम उसको याद करें तो हम तार जोड़ने की मेहनत ना करें, बल्कि वो मेरी आंखों के सामने ऐसे आ जाए कि जैसे वो हटने का नाम न ले। एक बार मैंने अभी संकल्प किया, यहां से मैं नक्की लाइक तक जा रहा था सवेरे सवेरे, और मन में ख्याल में आया कि बाबा को यहां से नक्की तक जाऊंगा तो बाबा को तो भूलूंगा तो नहीं, लेकिन बाबा को सामने देखूंगा, ऐसे देखूंगा बाबा और तार आ रहे, किरणें आ रही हैं और मैं आत्मा यहां बैठा हूं, बस इसी निश्चय में जाऊंगा कि बाबा भी देख रहा हूं, किरणें देख रहा हूं और मैं अपने आप को देख रहा हूं। पक्का प्रतिज्ञा कर लिया कि यहां से बाबा को मुझे देखना ही देखना है, बाबा को भूलना नहीं। लेकिन आप यकीन मानिए, यहां से नक्की तक जाने में मैं 20 बार भूल गया, एक बार भी भूलना नहीं चाहता तो 20 बार भूला। जैसे याद करूं तो अगले पल फिर भूल जाए, अगले पल फिर भूल जाए। बाबा याद रहे लेकिन शक्ल बाबा को देखूं, आंखें तो खुली हैं, सब देख भी रही हैं, वो भूल जाए, फिर याद करूं, फिर भूल जाए, फिर याद करूं, फिर भूल जाए। तो मैंने एक गीत आ गया, तुम दिखाई दो न दो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, कुछ कहो या ना कहो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारे तुम हमारे इतना सा संबंध है, अरे अपना तो जन्मों जन्म का हो गया अनुबंध है, मानो न मानो मर्जी तुम्हारी हम साथ छोड़ेंगे नहीं, तुम दिखाई दो न दो हम साथ छोड़ेंगे नहीं, तुम कहो कुछ ना कहो पर हम साथ छोड़ेंगे नहीं, हम साथ छोड़ेंगे नहीं। मैं भी पीछे पड़ गया, तुम साथ में रहो ना रहो पर हम साथ छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कहने लगे। सचमुच ये जो गीत बने भी हैं वो गीत केवल लेखनी के द्वारा बन नहीं गए, ये अनुभवों से विनिश्चित हुए, उनसे उद्भूत है और वो निकल करके फिर गीतों का रूप लेते हैं जो बहुतों को जीवनदायी प्रेरणा देते हैं। और उन्हीं क्रम में आज आपके साथ मुलाकात हो रही है, तो मैं ये कह रहा था कि बाबा मेरे सामने रहे, उसकी याद रहे। तो हमको सोचना चाहिए कि जब बाहर के लोग एक दूसरे के प्यार में जब वो सारी दुनिया भूल जाते हैं, नींद उचट जाती है, करवट बदलते बदलते रात बीतती है, तो हम बाबा के प्यार में जब थोड़े पल के लिए बैठे हैं, याद में बैठते हैं अमृत बेला, तो मुझे नींद क्यों आती है? कई भाई बहने होते हैं, लाल लाइट जली, रिकॉर्ड बजा थोड़ा सा, बस उसके नाम पर ही नींद आ जाती है, नाम लेते ही नींद आती है। लेकिन हम अपने आप को चेक करें कि मुझे नींद क्यों आती है। बाबा कहते तुम तो हमारे सच्चे आशिक हो, मैं तुम्हारा माशूक हूं। आज भी बाबा यही कह रहे, मैं तुमको देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। उसको देखें, देखने का मतलब ये नहीं बस सामने हमारी नजर बाबा की कास्केट के ऊपर है और बुद्धि में पता नहीं कहां कहां ख्याल आ रहा है, कहीं और पहुंच गए। उसके प्यार में, उसके स्नेह में उसको इतना धन्यवाद दें, उसके स्नेह में खो जाएं कि बाबा आप हमारे साथ ही बने, आपने साथ देने का वादा कर लिया है। अभी पिछले व्यक्त मुरली में यही था कि बाबा अंत तक साथ में रहेंगे, अंत तक साथ देंगे, बाबा का ये वादा है बच्चों के साथ। बच्चे कुछ भी करते हैं लेकिन बाबा का हमारे साथ एक गजब का टूट रिश्ता है, एक वचनबद्ध है वो हमारे लिए, वो दे रहा है। तो हम उसके प्यार को महसूस करें। एक शब्द में मैं कहूं तो याद में, अगर आपको कुछ याद करने में मेहनत लग रही है, केवल बाबा को अपनी उपलब्धियों के लिए, अपनी प्राप्तियों के लिए, अपनी पवित्रता के लिए, अपने ज्ञान मार्ग में आने के लिए, इतना उत्तम ज्ञान मिल जाने के लिए, इतनी प्रसन्नता, इतना प्यार मिलने के लिए, इतना अच्छा परिवार मिलने के लिए, और जो आपको इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला है, इन उपलब्धियों के लिए बाबा को धन्यवाद देते जाएं, उसके प्रेम और उसकी अनुकंपा, उसके अनुदान, उसके वरदान, उसके प्यार का अगर थोड़ा भी एहसास करें, अनुभव करें, थोड़ा रसा स्वादन करके, और उससे हम हृदय से आप्लावित होकर के उसके प्रति स्नेह से, आदर भाव से, प्यार से उसको धन्यवाद ज्ञापित करें, उसको कृतज्ञता व्यक्त करें, उसके लिए कृतघ्न ना बन जाएं, उसकी अनुकंपा के लिए उसको धन्यवाद दें, ये बहुत बड़ी चीज है। यही याद है, कहे बाबा आपने तो हमको क्या से क्या बना दिया, आपने हमारे साथ कितना एहसान किया है, हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमको भगवान इस तरह मिल जाएंगे, बिना कोई त्याग तपस्या के, बिना कोई मेहनत के आप मिल जाएंगे। घर बैठे लोगों के शरीरों में दीमक लग जाते थे, तपस्या कितनी की, लोगों ने क्या नहीं किया, उनको नहीं मिले और आप हमको मिल गए। क्या घर बैठे मिल गए इसलिए हमको वैल्यू नहीं, हम सोचे तो सही हमको मिला कौन है। हम जब निश्चय का दावा करते हैं कि बाबा हम आपको पहचान हो गए, मैं बाबा का, बाबा मेरा, जब ये हमको निश्चय हो गया है मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो हमको बाबा के प्यार में चटक जाना चाहिए, उसके प्यार में खो जाना चाहिए। मैं उस भाई बहनों से कहूंगा, आप सबसे कहूंगा, तीसरी बात कहूंगा कि आपको इस पूरी भट्टी के दौरान बड़ा अच्छा मौका मिला है, पांडव भवन सर्वोत्तम, संसार के सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च स्थान पे आने का मौका मिला है, और यहां चारों धाम है, एक एक जगह में, एक एक कण कण में जो स्फुलिंग है, जो यहां पर जो बाबा के, परमात्मा के प्यार का जो स्पंदन मिल रहा है, बाबा और मम्मा की जो तपस्या के जो यहां पर रंग बिखरे हैं, दादियों ने कितने वर्षों तक यहां पर तपस्या की है, इस धरनी पर आप आए हैं, तो इस धरनी पर एक ही जगह बैठ करके, आपके हाथ में कलम भी रहे, आपके हाथ में डायरी भी रहे, इनके मनन चिंतन कीजिए, ये पल जब बैठे हैं आपको क्या अनुभव हो रहा है, उन अनुभव की मोतियों को सजो लीजिए, जो बातें यहां हो रही हैं उनका मनन चिंतन कीजिए, बाबा के प्यार को प्रकट कीजिए। जो पत्र आप लिख करके कभी कभी देते हैं लेटर, उसको रोज लिखिए, आप एक डायरी बना लीजिए जिसमें लिखते रहिए पत्र बाबा के नाम, और उसमें चार लाइन लिखे, चार पेज के पत्र का, लव लेटर का जवाब हम चार लाइन तो दे, कुछ दे तो सही। तो आप जरूर लिखें, हर एक भाई बहन ये कोशिश करे जो लिख सकते हो कि वो चार पांच लाइन कम से कम बाबा से लिखें। अभी मुझसे एक ग्रुप मिल रहा था, मैं उसको यही बराबर बताता था, और मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें से ढेर सारा, अधिकांश का श्रेय जो जाता है वो इसी आत्मचिंतन और आत्ममंथन का है कि मैं बाबा को रोज पत्र लिखता था। जब मैं मधुबन में आया तो पांच डायरियां मैंने एक साथ बनाई, एक डायरी बनाई वो है पत्र बाबा के नाम, एक डायरी बनाई आज बाबा ने क्या कहा, माना मुरली पे जो भी होता था उस पर अपना चिंतन और मंथन लिखता था मैं, लगातार बहुत लंबे समय तक लिखता रहा हूं अभी भी। तीसरी डायरी जो बनाई है वो चार्ट की बनाई, 35 वर्ष हो गए मुझे चार्ट लिखते हुए, इस 40 वर्ष हो गए, क्योंकि मुझे याद है मधुबन में आने से पहले मैं अपने बड़े भाई साहब के पास यूपी में गया, मिर्जापुर में गया, ओबरा थर्मल हडल सर्किल में गया वहां पर, और वहां पर मैं चार्ट लिख रहा था, तो वो मुझे याद है कि बचपन से मैं चार्ट लिखता रहा हूं, और हर सोमवार को मौन में रहा करते थे यहां आने से पहले। उन सब चीजों का लाभ इतना मिला कि पुरुषार्थ में बड़ी गजब की अपलिफ्टमेंट मिली, बहुत अच्छी उम्दा, और ये संयोग था कि मधुबन में आए तो हमें एक बहुत अच्छी टीम मिल गई सूरज भाई आदि का, इतना अच्छा साथ मिला कि मैं हृदय से उन सब आत्माओं का धन्यवाद देता हूं। कहने में जरा भी संकोच नहीं होता है कि बाबा ने तो हमको दिया ही भाग्य, लेकिन बाबा ने ऐसे महान आत्माओं का साथ दिया कि दादियों का प्यार मिला, बड़े भाई बहनों का मिला, इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है कि वो प्रसन्नता से भरा हुआ है, वो छलक रहा है। वो चाहे वो गाने में आए, चाहे वो खाने में आए, चाहे वो लिखने में आए, चाहे पढ़ने में आए, चाहे बोलने में आए, मैं उस प्यार से आप्लावित हूं, उससे रचा बसा हूं, सना हूं। और बहुत दिन से योग कर रहा था कि कब हिसार वाले आए और हिसाब किताब उनसे पूरा करूं मैं, ठीक है ना। तो आपका जो यहां पर आना हुआ है, आपका यहां जो आना हुआ है, ये दादा बाबा बाप दादा के वरदानों से, दादियों के तपस्या के प्रकंपन से, और हम सबके बहुत दिनों के हृदय की जो पुकार है कि मधुबन में आए, इतना अच्छा वातावरण है, हमने तो पता नहीं कितने दिन से ब्रह्मा भोजन खाया, कितनी टोलियां खाई, कितनी वाणियां सुन ली, कितनी प्रसन्नता से लबरेज हो गए हैं। इनको बांटू तो किसको बांटू, ये हिसार वाले भाई बहने कब आएंगे जो मैं इनको बांटू, इनको दू। तो बड़े दिनों के तपस्या के बाद कहीं पर आपका यहाँ पर शुभागमन हुआ है, इस श्रेष्ठ आगमन को आप स्वीकार करें एक बार और पुनः पुनः। तो आप जरूर आज से, चाहे घर पे हूं यहां पर हूं, डायरियां जरूर बनाएं। उसी क्रम में एक डायरी मैं और लिखता था, चिंतन मनन के अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखता था, क्योंकि जब से यहां मधुबन में आया तो अच्छा संग मिल गया, लेखन पाठन करने का अच्छा मिला, लेख वगैरह भी लिखते रहे हैं, कई और ढेर सारे कामों में भी लिखते रहते हैं, संपादन भी करते हैं, अपनी एक न्यूज़लेटर भी बनता है, वो भी मैं लिखता हूं, तो और ज्ञानामृत वगैरह के लिए भी लिखते रहे पहले, इन दोनों में ज्यादा व्यस्तता हो गई। तो उससे क्या हो गया, चिंतन को बड़ा अच्छा एक मुकाम मिला। और मेरा ही अपना अनुभव है और आपके लिए राय है कि यदि आप लंबे समय तक यदि ईश्वरीय ज्ञान में चलने का ही नहीं, यदि ज्ञान का आनंद लेना चाहते हैं, यदि बाबा के प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं, और यदि स्ट्रांग होना चाहते हैं, बहुत मजबूत होना चाहते हैं, तो आप अपने हर दिन को बाबा के साथ अपनी डायरी, अपने पेन को, अपने मनन चिंतन को जरूर माध्यम अपना साथी बना लें। बाबा साथी तो है, और बाबा साथी होने के साथ एक साथी ये भी है, इसका भी संभाल करें। और तीसरा साथी है आपका मनन चिंतन। एक बार किसी ने बाबा से पूछा, अव्यक्त बाबा से, बाबा जब आप कहते हैं कि योग ही सब कुछ है और याद में हमको पूरा प्रवीण होना है, 8 घंटा कम से कम याद हो, निरंतर योगी बन जाएं, अंत में एक बाबा की ही याद रहे, जब याद ही याद सब कुछ है, तो इतनी मेला मलाखड़े करने का, प्रदर्शनी लगाने का, ज्ञान सुनाने का, डायरियों में पॉइंट्स लिखने का, पढ़ने का, इतना सेवा करने का, इतना भागा भागी करने की जरूरत क्या, हम बैठ के योग ही करें, क्यों ना करें। तो बाबा ने राय दिया कि बच्चे अंत में जब तुम्हारा योग स्थिर नहीं रह पाएगा, ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, ऐसी ऐसी बातें आएंगी, ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे, ऐसे ऐसे पेपर्स आएंगे कि आपका योग टूट जाएगा, उस समय आपका ज्ञान का शक्तिशाली मनन चिंतन ही आपको योगयुक्त कर सकेगा। तो जिनके पास योग का, ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान में चलने का, अनुभवों का, चिंतन का, मनन करने का अच्छा हुनर है, वो इस ज्ञान मार्ग में एक लॉन्ग रेस के घोड़े साबित सिद्ध हो सकते हैं। जिन्होंने सेवाओं के माध्यम से रह रहे हैं, जो टोली के माध्यम से रह रहे हैं, ब्रह्मा भोजन के माध्यम से रह रहे हैं, या जो स्नेह और सहयोग के माध्यम से बाबा के बने, उनके लिए तो हर पल खतरे घंटे बजती रहती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिन्होंने बाबा के ज्ञान को मनन चिंतन और ज्ञान के आधार पर अपने आप को शक्तिशाली बना लिया है कि दुनिया कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई हमारी परीक्षा ले ले, लेकिन हम बाबा के हैं और बाबा के ही रहेंगे। कहते तो वो भी थे जो शुरू शुरू में आए थे और आज नहीं है, खून से भी लिखा, ब्लड से लिखा, लेकिन आज वो नहीं रहे। आप खुद सोचिए, जिन्होंने बाबा को सब कुछ दे दिया, बड़े बड़े परिवारों से आए, सब यहां पर आए, वो चले गए, तो क्यों मेरा बाबा कहते कहते लोग क्यों चले गए। तो हमें कितना शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। आने वाले समय में परीक्षाओं के अलग अलग पेपर्स आएंगे, प्रकृति के द्वारा पेपर होगा, स्वयं के संस्कारों द्वारा पेपर होगा, मित्र संबंधियों के द्वारा पेपर्स होंगे, सामाजिक आर्थिक भौतिक कारणों से पेपर्स होंगे, आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण पेपर होंगे, जो बुरी आत्माएं हैं उन लोगों के कारण भी पेपर्स होंगे, आपके स्वभाव संस्कारों के द्वारा पेपर तो होंगे ही होंगे, बीमारियों के द्वारा भी पेपर्स होंगे, जानवरों के द्वारा, पशुओं पंछियों प्राणियों इनके द्वारा भी पेपर्स होंगे। कई भाई बहनों के ढेर सारे पेपर्स ऐसे भी होते हैं, और अंत में एक सबसे बड़ा जो पेपर होगा वो पेपर होगा ब्राह्मणों के, पेपर्स ब्राह्मणों के द्वारा होंगे, सबसे बड़ा पेपर ये है। बहुत ढेर सारे ऐसे पेपर्स होंगे जो आप जिनको अपना समझते हैं, जो आपकी बिल्कुल निकटवर्ती हैं, निकटतम हैं, उनके द्वारा जब पेपर होगा तो आपको लगेगा ये क्या हुआ, मेरी एक तो दीदी थी, दीदी भी मुझे नहीं पहचान रही है, क्या हो गया। मैं दीदी की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी दीदी की एक उदाहरण दे रहा हूं। होंगे ऐसे पेपर्स होंगे, क्योंकि हम सबसे समीप होते हैं, आपके पेपर्स ऐसे होंगे। लेकिन आपको मजबूत रहना, इतना मजबूत रहे कि मैं परमात्मा के प्यार से इतना भर चुका हूं कि मुझे इंसानों के प्यार की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कि कोई इंसान, दो हाथ वाले, दो भुजाओं वाले कोई इंसान हमको प्यार करें, तब मैं प्यार से भर जाऊं। क्योंकि ये मानव मन की बड़ी कमजोरी है कि जहां से उसको थोड़ा सम्मान मिलता है, जहां उसको थोड़ा स्नेह मिलता है, जहां थोड़ा भी उसको प्यार मिल जाता है, वहां व्यक्ति लटक जाता है, वहां झुक जाता है उधर। ये मानव मन की कमजोरी। लेकिन जो सवेरे उठते उठते ही अपने आप को प्यार से भर देता है, जो ईश्वरीय प्रेम से अपने आप को भर लेता है, वो फिर किसी भी और प्यार की उसको आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो ईश्वरीय प्यार और ईश्वरीय सम्मान से अपने आप को सम्मानित कर लेता है, जिसको ज्ञान सूर्य स्वयं परमात्मा ने प्रकाशित कर दिया है, उसको लोगों के मान शान प्रकाशित करें कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए आप शक्तिशाली बन जाए आने वाले पेपर्स में भी, उसके लिए ज्ञान के मनन चिंतन कर लें। यही आधार मैंने भी लिया जब शुरू में आया, तब से मैंने डायरियों में बहुत अच्छे अच्छे डायरिया लिखी। हालांकि उनमें से ढेर सारी डायरिया ऐसी थी कि कई लोगों ने पढ़ने के लिए लिया और दिया ही नहीं, वो डायरियां गुम हो गई, कई डायरियां गुम हो गई, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा लिखते रहना है, पढ़ते रहना है, मनन चिंतन में व्यस्त रहना है। और आज जो कुछ भी मुझे आपके बीच में मिला है मौका पहुंचने का, मैं इसको भी श्रेय देता हूं कि आज मनन चिंतन ने बहुत बलवान बनाया है, शक्तिशाली बनाया है, उसके आधार पर चल रहे हैं। और ऐसे ही ये चिंतन मनन के साथ मेरे पास ढेर सारे ऐसे हैं कि मैं अपने भाई बहने ढेर सारे आते हैं, मेरे मन में ये होता है कि कोई भी भाई बहन हमारे पास आए, मधुबन में आए और हमसे कुछ सहयोग मांगे, तो उसको ना नहीं कहना है। शुरू में मैं मधुबन में आया तो दो बात का लक्ष्य बनाया जिसने आज मुझे बहुत मदद की। एक बात तो ये मदद किया कि मुझे मधुबन की दिनचर्या में पूरा पूरा एक्यूरेट होना है, मधुबन के नियम मर्यादाएं जो परिवार के हैं, जो दिनचर्या है, उसमें पक्का होना है। और इस धारणा ने इतना मदद किया कि मैं कभी भी मधुबन में रह करके एक दिन भी अमृत बेला मैं मिस कर दूं, मैं ये गंवारा नहीं करता। मैं मधुबन में रहने वालों को, मधुबन में आने वालों को, सभी भाई बहनों को ये राय देता हूं कि सारे संसार के भाई बहने यहां आते हैं, शांतिवन तक भी आते हैं, तो सोचते हैं एक अमृत बेला मुझे पांडव भवन में करने को मिल जाए, मौका मिल जाए, आहा मजा आ जाए। उसके लिए हमारे पास जो भाई हैं निमित्त एकोमोडेशन वाले, उनके पास बहुत फोन आता है, भैया एक रात को रहना चाहते हैं, आप हमको जगह दे दो तो हम अमृत बेला आनंद ले लें। बहुत सारे ज्ञान सरोवर से यहां पर भाई आते हैं गाड़ी सवेरे सवेरे, बहुत सारे हॉस्पिटल के भाई बहने आते हैं, ढाई बजे आ जाते हैं यहां पर। तो मैं कहता हूं कि मधुबन में रह करके अगर मैं मधुबन में रहकर एक अमृत बेला बाबा का कहना नहीं माना, ये मेरे लिए बड़ा अपराध हो जाएगा, बड़ा अपराध। इसी कोशिश में, इसी लगन में आज तक मैं मधुबन में रहकर कभी भी अमृत बेला मिस नहीं करता हूं। इसके लिए बाबा और दादियों ने ढेर सारे इनाम मुझे दिए हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप भले ही थोड़ी आवाज होती लेकिन ताली ताली स्वीकार कर लें हमारी। ये मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि कि यदि आपको बाबा के प्यार में मगन हो जाना है तो उसकी पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पहली श्रीमत है कि आपका अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए और मिस ही नहीं होना चाहिए। अमृत वेले में इतना आनंदित आप रहिए कि आनंद बांटिए, औरों को दीजिए। आप सवेरे सवेरे वैसे ही दे रहे हैं जैसे प्यासे बच्चे को मां जो है वो दूध पिलाती है कि अगर वो दूध न पिलाए तो बच्चा प्यासा रह जाएगा। मैं यहां पर इसलिए ऐसे बैठता हूं कि हमने बहुत सारे भाई बहनों को वादा किया है कि अमृत वेला मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, अपॉइंटमेंट लिया है मैंने। और सवेरे जब यहां अमृत वेला बैठता हूं, आप यकीन मानिए हमारा, मेरा अधिकांश समय आपको दृष्टि देकर आपके लिए शुभकामना देने में, आपको आपको मदद करने में, आपको प्रोत्साहित करने में, आपको प्रशंसित करने में, आपको जागृत करने में, आपको उमंग उत्साह से भरने में, आपको शुभकामनाएं देने में, और यहां से देश विदेश के भाई बहनों को देने में, प्रकृति को पावन करने में, और उन लाखों दुखियों और जो हमारे दूसरे भाई बहने हैं उनको आनंदित, उनको ठीक करने में। जो बाबा कहते हैं, क्या तुमको दुखियों की चीत्कारें सुनाई नहीं पड़ती? क्या भक्तों की पुकारें तुम तलक नहीं आती? क्या वतन में बैठा हो तुमको आवाज नहीं सुनाई पड़ती? एक मैं गीत जो है उस माध्यम से अपने इस भाव को मैं व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि 12 बजे का समय है भी। आप तो वैसे मुझे यकीन है कि आप हमारे आगे कभी भी आलस में नहीं बैठेंगे, लेकिन एक गीत सुनाना चाहता हूं। वो कैसेट में तो है लेकिन बहुत कम सुनने को मिलता है, वो गीत मैं सुनाना चाहता हूं। बाबा बुला रहे हैं बच्चे वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। क्या भक्तों के पुकारे पड़ती नहीं सुनाई, दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक नाए? अब कुछ तरस तो खाओ, उनको दरस दिखाओ, उनको दरस दिखाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया, मेरे समान बनकर वादा तुम भी निभाओ, वादा तुम भी निभाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक, इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक, अब देर ना लगाओ, आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा की ये आवाज हमारे कानों तक आना चाहिए। बाबा कब तक वतन में इंतजार करेंगे? क्या सुनाई नहीं पड़ती आवाजें? आज दुनिया में कितना कष्ट है लोगों के, शायद उस कष्ट को हम अपनी खुशी में भूल गए हैं, सुनाई नहीं पड़ती आवाज। ये यहां पर हमें आवाज नहीं आ रही है, उनकी आवाजें सुनाई पड़ना चाहिए। तो बाबा की आवाज हमें सुनाई पड़ना चाहिए। मैं आपको अनुभव के द्वारा ये बात बता रहा था कि आप भट्टी का लक्ष्य बनाएं कि आप जरूर यहां बैठ के मनन चिंतन को अपना जरूर आधार बनाएं, अच्छी अच्छी डायरियों से अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। और आलस्य अलबेलापन की बात कर रहा था कि आप यहां से भट्टी एक ऐसी सबक लेकर के जाएं, एक भट्टी की अच्छी प्रेरणा लेकर के जाएं कि जो यहां से जाने के बाद हर दिन आपकी भट्टी हो जाए, हर दिन आपके जीवन का ऐसा लगे कि जैसे मैं मधुबन में बैठा हूं और जैसे हर रोज बाबा के साथ मेरा मिलन हो रहा है और मैं भट्टी में सच्चा सोना बन रहा हूं और रियल गोल्ड बनकर के मोल्ड हो रहा हूं, हमारा रूप भी परिवर्तित हो गया, सब कुछ बदल जाए। तो उस भट्टी के लक्ष्य में जैसे मैंने बताया कि जैसे बाहर की दुनिया में किसी का प्यार होता है तो उनकी नींद उड़ जाती है, बाहर की दुनिया में जब कहीं लालच होता है, लोभ होता है, बाबा कहते हैं ना स्टीमर आता रहता है, रात भर कमाई होती है तो लोगों की नींद फिर जाती है कमाई में, तो ऐसे हमको भी जब याद में बैठे तो ये ध्यान में आए कि मैं योग लगाने के लिए नहीं बैठा हूं बल्कि कमाई करने के लिए बैठा हूं। बहुत दिनों के बाद कल्प के बाद बाबा से मिला है और वो भी हमारे जीवन के उत्तरार्ध में अंतिम दिनों में, पता नहीं वो भी समय भी बीतता जा रहा है, दुनिया का तो विनाश का पता नहीं है लेकिन अपने जीवन का तो भरोसा नहीं। ये जीवन के कुछ क्षण मिले हुए हैं और वो भी नहीं कह सकते कितने क्षण मिले हुए हैं, उसमें भी बाबा को याद करने बैठे हैं और दिन की दिनचर्या के एक छोटे से भाग में कहीं पर याद करने बैठे हैं, इसमें भी बाबा को याद नहीं करेंगे तो अपने 63 जन्मों के 84 जन्मों के जो विकर्म है वो हम कब खलास करेंगे? और जो हमारे आधे कल्प के जो देवी देवता के जो संस्कार हैं, देवता बने हैं, उन संस्कारों को कब इमर्ज करेंगे? 2500 वर्ष तक आप देवी देवता बनकर के यहां पर राज्य किए, आप देवी देवता बने, वो संस्कार कहां गए? उनको याद कीजिए और फिर से अपने आप को तरोताजा कर दीजिए, इसी के लिए आप मधुबन में आए हैं, एक बार तरोताजा होने के लिए। तो अपने आप को ये देखें और अपने आप से बात करें कि जब हमारे कमाई ही कमाई है तो नींद कहां? नींद तो उनकी भी उड़ जाती है जिनसे किसी की दुश्मनी होती है, जैसे उस दिन कोई बात हुई ना कि जो बहुत प्यारा होता है उसके लिए नींद उड़ जाती है, लेकिन जिससे घृणा भी होती है, जिससे डर होता है, दुश्मन वहां पर फौज में क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं और कब सुसाइडर आ जाएं कि बम्बार्डमेंट कर दें, वो देखते रहते हैं, कहीं कोई सीमा पर देखते रहते हैं, कहीं कुछ तो नहीं, अंधेरे में भी वो आंखें फाड़ के वो देखते रहेंगे, चौकसी करते रहेंगे। और यहां पर माया तो चारों तरफ हमारी चौकसी कर रही है कि कब थोड़ा सा ऐसा सिर करें बस इनके ऊपर अटैक कर दूं, तो चारों तरफ से उनका अटैक है माया का, इसलिए हमें बहुत सावधानी चाहिए कि वो चारों तरफ चौकसी किया है, हम चौकसी करें ऐसा कि हमारे इस ईश्वरी परिवार में माया की जरा भी विघ्न ना आए। मैं सवेरे यहां अमृत वेले के योग के बाद यहां निकल के जाता हूं, यहां मेडिटेशन हॉल का जो स्टेप्स होता है यहां पर एक मिनट के लिए खड़ा होता हूं, ये दिखाने का नहीं, मैं रोज का अभ्यास का आपका एक बात बताता हूं, वहां से सामने शांति स्तंभ पर एक दृष्टि लेता हूं सामने और बाबा को देख करके एक किरण बाबा से लेता हूं और ऐसे किरण लेकर के इसे ऊपर लेकर के ऐसे एक लक्ष्मण रेखा ऐसे चारों तरफ घुमाते 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 ऐसे अपने पूरे इस तरफ का पूरा एक रेखा खींचता हुआ ऐसे इसे खींचता हुआ पूरा जो है एक लक्ष्मण रेखा खींच लेता हूं और कहता हूं कि आज ये जो मैंने लक्ष्मण रेखा खींची है, आज इस लक्ष्मण रेखा के अंदर माया के एक भी जर्म्स, एक भी कीटाणु, एक भी वाइब्रेशंस, एक भी कोई पर वो नहीं होनी चाहिए, इविल स्प्रिट नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रकार के कोई भी भाई बहने यहां पर आए उनके मन में भी व्यर्थ संकल्प न चले, व्यर्थ विकर्म तो दूर रहें, ये मैं यज्ञ रक्षक हूं, मैं यज्ञ रक्षक हूं, मैं यज्ञ रक्षक हूं, मैं यज्ञ रक्षक हूं। इस प्रकार से एक श्रेष्ठ संकल्प से भर लेता हूं और बाबा की प्यार से हमारा इस यज्ञ की परवरिश जो पा रहा हूं, इतना ब्रह्मा भोजन खा रहा हूं, बाबा की प्रति प्रेम में मैं आप्लावित हो जाता हूं। सच बताऊं इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। आपकी आंखें तो खुली रहनी चाहिए, ये आंखें ऊपर भी देखे, इधर भी देखें, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखें। जो ब्रह्मा को चतुर्मुखी ब्रह्मा कहते हैं, वैसे ही हमको भी हमारी चारों दिशाओं में आंख खुली होनी चाहिए। ऐसे सजग हो जाएं, इतना जागृत हो जाएं, सतत जागरूकता आ जाए, कांस्टेंट अवेयरनेस हो जाए हमारे अंदर कि अब ये आंखें दोबारा बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमारी आंखें खोल दी हैं। बिल्कुल, अब आंखें खुली रहनी चाहिए। और नेक्स्ट बात और भी कहना चाहता हूं कि भट्टी में जब बैठते हैं यहां सतर्कता के लिए, तो जितना भी हो सके जो भी कोच और कुर्सी पे बैठते हैं उनको मैं कहूंगा कि भले थोड़ा कष्ट हो, जैसे मैं बैठा हूं, देखो यहां भी बैठा हूं, मुझे इस कुर्सी पे बैठ जाना, बिल्कुल अपने अनुभव की बात बताऊं, मुझे इतना अभाता नहीं है। मैं जब ऐसे बैठता हूं, संदल पे बैठता हूं, ऐसे आसन में घंटों घंटों तक बैठता हूं, ये बाबा की देन है कि बैठ लेता हूं, अभी आगे की मालूम नहीं है, लेकिन जब तक बैठ लेता हूं ये सिंहासन, ये अर्ध पद्मासन ऐसे बैठता है, बैठता हूं कि जैसे लगता है कि मैं बाबा के पास, बाबा की गोद में बैठ गया हूं। बाबा को देखते हैं ना, बाबा कैसे बैठते हैं, ये आसन बहुत अच्छा है। आप नहीं बैठ सकते हैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम कोच और कुर्सी जितने आप आराम से बैठ जाएंगे उतना आराम से आप निद्रा लोक में जाएंगे। निद्रा की मुद्रा ज्यादा बनेगी, योग की मुद्रा कम बनेगी। इसलिए मैं अपने भाई बहनों से कहूंगा कि वो अमृत वेला कभी मिस न करें, हिसार में जाएं। अगर आप सचमुच योगी जीवन का, ब्राह्मण जीवन का, बाबा की श्रीमत का, बाबा की प्यार का आनंद लेना चाहते हैं, तो दो बात पक्का कर लें, कभी भी अमृत वेला मिस ना हो, शक्तिशाली अमृत वेला हो, पावरफुल अमृत वेला, और दूसरा आपको बाबा की मुरली से इतना लगन लग जाना चाहिए, बाबा की मुरली आपके जीवन की बागडोर बन जाना चाहिए। जिन्होंने अपनी इन दो बातों को पक्का कर लिया है वो निर्विघ्न बन जाएंगे, ये मैं आपकी को आपके अपनी तरफ से मैं गारंटी देता हूं। और ये कहता हूं कि यदि आपको दिन भर में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आपके मन में कहीं कोई डाउट होता है, या कहीं हलचल होती है, या कहीं उदासी आती है, या कहीं विघ्न आते हैं, या चाहे सेंटर्स पर या घर की तरफ से कहीं आते हैं, आप बारीकी से चेक कीजिए, केवल दो बात के कारण होते हैं, वो है अमृत बेला शक्तिशाली न होना और मुरली पर पूरा अटेंशन न देना। आपने ये दोनों पार्ट पक्का कर लिया तो बाबा से जो हमने वादा किया है कि बाबा हम निर्विघ्न बनेंगे और निर्विघ्न बनाएंगे, बाबा के संकल्पों को हम अवश्य पूरा करेंगे और आप इसमें सफल होंगे। तो आप हमारी इस बात को स्वीकार करें और अपने इस ब्राह्मण जीवन में इस चीज को सारांश में बहुत महत्व दें और अपने दिल पे बिठा लें कि मुझे आज के बाद मधुबन से कम दो बात का पक्का संकल्प लेकर जाना है। मेरी अपने छोटे भाई की मुझकी मेरी एक इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, अम्बल यह रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन दो बातों को ध्यान रखें, ज्यादा विस्तार में ना जाएं, दो बातें आपको इतना मजबूत बना देंगी कि ब्राह्मण जीवन में आपको विजयी बना देंगी, मजबूत बना देंगे, आप उड़ते रहेंगे एवरलास्टिंग। और इसके साथ साथ उनकी बात मैं कहूंगा, जैसे एक मां होती है, मां का एक नौजवान बेटा अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या शरीर छोड़ देता है, मां की महीनों तक की नींद खत्म हो जाती है, मास तक की नींद खत्म हो जाती है, बोलिए उसकी नींद कहां जाती है? जाती है नहीं है ना? कोई बेटा हो उसको कितने दिन तक नींद नहीं आती? ऐसे जब हमारा बाबा से प्यार है तो हमें भी अब आंखों से नींद उड़ जानी चाहिए। ऐसे ऐसे करके मैंने विश्लेषण किया और आज महसूस करता हूं कि हमारे योग में जिसको राजयोग कहते हैं उसमें निद्रा का कहीं स्थान नहीं है। कहीं कहीं बहे बहे ऐसे बैठते हैं कि मुझे योग जरूर करना है और योग में बहुत काफी आलस्य का अनुभव करते हैं। मेरी उनसे अम्बल रिक्वेस्ट है कि योग में कभी भी राजयोग की परिभाषा ये ना बनाए कि योग का मतलब है कि बैठ जाना और नींद करना। और आज जैसा कि टॉपिक दिया है आपको कि घर को मंदिर समान कैसे बनाएं, उसके लिए सात बात हमारी याद रखें। पहली बात तो यह है कि स्वच्छता बड़ी आवश्यक है। स्वच्छता के बिना घर को हम मंदिर नहीं बना सकते हैं। घर में आप कैसे भी रह लेते हैं, लेकिन मंदिर को अस्वच्छ बना के रखेंगे लोग उसको मंदिर नहीं कहेंगे। और इसी स्वच्छता की संपूर्ण परिभाषा है पवित्रता, जिसको कहते हैं पवित्रता। घर में आप कैसे रह लेते हैं, घर में मंदिर में फर्क यही है कि घर जो है आपका मंदिर नहीं है, लेकिन जहां पवित्रता है वहां उसको मंदिर कहते हैं। तो पवित्रता हमारे ब्राह्मण भाई बहनों को विशेष करके, जितने भी बीके भाई बहने हैं और जो घर गृहस्थ में रहते हैं, आप सब के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन गई है, क्योंकि बाबा के ज्ञान की प्रत्यक्षता आप भाई बहने जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनके तपस्वी जीवन से, उनके पवित्र जीवन से, और जब वो ललकार करेंगे सन्यासियों को कि जिस काम को आप कहते हैं कि स्त्री पुरुष साथ में रहना आग और कपास की तरह रहना होता है, उसी चीज को हम कहते हैं हम भाई बहन बन करके किस तरह घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रह लेते हैं, हम चैलेंज करते हैं। और आप जब चैलेंज करेंगे तो सारे विश्व में भगवान के नाम का, भगवान के ज्ञान का डंका बजेगा और सारे विश्व में ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी। इसलिए भगवान के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले आप सब हैं जो परिवारों में रहते हैं, और हमने ऐसे परिवार देखे हैं कई भाई बहनों को, वो साथ में रहते हैं लेकिन इतने अच्छे ढंग से रहते हैं कि उनको कभी भान भी नहीं आता है कि हम स्त्री पुरुष भी हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा आप जानते हैं कि हमारे मन वाणी कर्म संबंध संकल्प, यहां तक कि हमारे संबंध संपर्क के साथ हमारे स्वप्नों में भी पवित्रता आ जानी चाहिए। अगर अपवित्रता हमारे स्वप्नों में अभी तक भी आ रही है तो हमें अपने आप को खंगालना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि ये अभी आस्तीन की सांप की तरह, आइसबर्ग की तरह अभी तक भी सांप जो है, विषय विकारों के सांप जो है अभी भी अंदर अंदर फुफकारे मार रहे हैं, जो दैहिक दृष्टि से, वृत्ति से, देह के आकर्षण से, स्त्री पुरुष के भान से हम अभी भी भरे हुए। और ये इतना आसान नहीं, स्त्री को भूल जाए कि मैं स्त्री हूं और पुरुष को भूल जाए मैं पुरुष हूं, वो इतना सहज नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि मासी का घर नहीं। इसलिए घर को मंदिर बनाने की चाह रखने वालों को इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि वो ये बात तो भूल ही जाए कि हम स्त्री पुरुष हैं, दूसरी बात ये भी भूल जाए कि हम भाई बहन हैं, बल्कि ये भान हो जाना चाहिए कि मैं आत्मा 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 की धुनी लग जाए। मैं आपको इस विषय में बताऊं कि मेरा स्वराज अधिकारी बनने का और आत्मिक चिंतन करने का, आत्मअभिमानी बनने की एक बहुत अच्छी मैंने प्रयोगशाला बनाई है, और उस प्रयोगशाला को प्रयोग करता हूं वो आपको देही अभिमानी बनाने बनने में, घर बार में रहते हुए पवित्र बनने में बहुत मदद करेगा, और वो है आत्मअभिमानी बनने की लगन। मैं इसके लिए विश्लेषण करता हूं शरीर से अलग होने का कि मैं शरीर से कैसे अलग होकर के मैं देख रहा हूं। यह अभ्यास आप कर सकते हैं। आपका जो हम सबका इस ईश्वरीय जीवन का, ब्राह्मण जीवन का जो पहला पाठ है कि मैं आत्मा हूं, इस संबंध में मैंने ढेर सारे गीत बचपन से लिखे हैं, कई गीत लिखे हैं। एक गीत लिखा, ऐ आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। अपने आप को देखता हूं, इसकी निगरानी करता हूं, प्रारंभ में लिखा था, अस्मिता बहन गाया है ये गीत। ऐसे एक गीत लिखा, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं। वो बड़ा अच्छा वर्णन है एक्सप्लेनेशन का, आत्मा और शरीर के विश्लेषण का। फिर तीसरा एक गीत लिखा, भृगुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे पलकें उठा के निहारा करूं, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुझको बिठा कर मिलन में मनाया करूं। कभी तन से जाऊं कभी तन में आऊं, जाऊं वतन या वतन को ही लाऊं। इस तरह के अनुभव में जो आए वो मैंने लिखा, इस चीज को लिखा। फिर कुछ दिन के बाद लिखा, मैं झिलमिलाती मैं जगमगाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूं मैं मस्तक मणि हूं। ये सब आपने सुने होंगे इन गीतों को, तो इन सब गीतों को लिखा। फिर एक गीत लिखा, मैंने देखा कि राजधानी बनाता हूं कि मैं आत्मा राजा हूं, मस्तक पे बैठा हूं, बड़ा अच्छा मन चिंतन करता हूं इसको, तो मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्म इंद्रियां कर्मचारी हमारी भेकुटी बीच दरबार अपना लगाएं, करें मंत्रणा अपने मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्रछाया, उसकी छत्रछाया है, खुदा दोस्त की हम पे है छत्रछाया, जो खोया था स्वराज्य फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिलके गाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना लगाएं, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना लगाएं, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना। ये अनुभव में आते हैं कि किस तरह से मैं राज दरबार लगाता हूं, इसके लिए मैं आत्मचिंतन करता हूं, अपने बारे में आत्मचिंतन, फिर आत्ममंथन करता हूं, अंदर में गहराई में जाता हूं, आत्ममंथन करता हूं, मथता हूं। मथने का मतलब है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जिसे बाबा ने शुरू शुरू में लगा दी थी। फिर है आत्मदर्शन करता हूं, आत्मदर्शन का मतलब है अपने आप को देखता हूं कि मैं मस्तक बैठा हूं, यहां पर यहां बैठा हूं। ये आत्मदर्शन की प्रयोगशाला बड़ी अच्छी है। अपने भी देखो, जो बाबा कह रहे हैं आज देखने की बात, पहले मुझे कभी कभी हंसी होती थी, आती थी, वो दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, ये गीत जब से लिखे तो बार बार कहे दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, कभी हंसी आते, बाबा कहते देखते ही नहीं रहो, कुछ सोचते भी रहो, बाबा से बात भी करते रहो। तो मेरे मन में आया क्या गीत बनाया जिसे दुनिया में लोग कहते हैं दिल कहे तुझे देखता रहूं, दिल कहे तुझे देखता रहूं, ऐसा भी मैं भी कहता हूं बाबा को देखता रहूं, देखता रहूं, इससे काम थोड़े बहुत चलेगा। लेकिन आज तो बाबा बोल भी बैठा है कि मैं तुमको देखता रहूं, तुम मुझको देखते रहो। तो मैंने कहा पक्का कि अब देखने में मजा जो आता है वो कहीं और में मजा नहीं आता है। तो देखने के आदि हैं तो बाबा को खूब जी भर के देखें, वो हमको देख रहा है, हम उसको देखें। वो सारा दिन हमको देखता है सवेरे से कि मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरा साथी आंख खुल गई है, अभी मेरी तरफ देखेगा। फिर देखता है कि आंख तो खुल गई है, उठ भी गया है, लेकिन अभी देखा नहीं, शायद अभी देखेगा। फिर योग में बैठा है, योग में सोचता हूं कि अब मेरी तरफ आएगा, मेरी तरफ देखेगा, तो इधर उधर देखता है कौन योग में कैसे बैठे हैं, सामने कौन बैठा है, आज दिन किसका देखा है, आज किसको देख रहा हूं, फिर भी देखता रहता है। फिर बाबा देखता है कि चलो चलो, योग में देखा नहीं, योग पूरा हो गया, बड़ा थका था, अभी नहीं देखा है, तो चलो अभी थोड़ी देर के बाद तो देखा, फ्रेश हो गए। देखता है तो भी नहीं देखता है। तो देखता हूं कि चलो बाबा के स्नान वनान करने के बाद मुरली सुनेगा, अब तो सोचेगा कि बाबा अभी आ रहे हैं परमधाम से, बाबा मुरली सुनाने के लिए आ रहे हैं, अब तो देखेगा मेरी तरफ कि बाबा चल पड़ा है, वहां से चला है कि कहां से चला है, वो तो देखेगा। देखता हूं वहां से भी देखा नहीं, मुरली सुन रहा है, कुछ सो रहा है, कुछ जाग रहा है, कुछ इधर देखा, कुछ उधर देखा, मुरली पूरी हो गई तो भी मेरी तरफ नहीं देखा। तो मैं सोचता हूं चलो अभी भूख लगी होगी, नाश्ता करेगा, खाना खाएगा, पेट में कुछ जाएगा, पेट में पड़ेगा चारा, तो नाचने लगेगा बेचारा, तो तब तो देखेगा, मेरी तरफ देखेगा। देखता हूं नाश्ता भी कर लिया, फिर भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर सोचता हूं चलो अब ऑफिस में जाएगा, काम वाम पे जाएगा, कुछ आएगा, टेलीफोन घंटी बजेगी, तब तो मुझे याद करेगा। देखता हूं वहां भी याद नहीं किया। फिर देखता हूं काम है तो औरों के ऊपर बिगड़ रहा है, सब कुछ है, अभी भी मेरी तरफ नहीं देख रहा। कहता मेरे दोस्त एक बार जरा गलती करके मेरी तरफ तो देख, सारा दिन मैं तुझको देख रहा हूं, एक सेकंड के लिए तो देख, तो भी मेरी तरफ नहीं देख रहा है। तो मैं घड़ी में देखता हूं, इतने में सामने गाड़ी आती है, तो सोचता हूं इसी बहाने तो याद करेगा कि बाबा मुझे बचाओ, एक बार कहेगा तो मेरी तरफ देखेगा। देखता हूं वहां भी नहीं देखता है, घंटी बजा लेता है, फोन की घंटी बजती तो भी, एक पेपर दे दिया, पहुंचा दिया है कि बाबा के नाम की सामने पेपर है, अब तो बाबा तरफ देखेगा, लेकिन फिर बिजी हो जाता, वो भी नहीं देखता है। काम पूरा हो जाता है, वापस घर पे आ जाता है, अब थका मांदा है, तो सोचता हूं चलो अब तो काम पूरा हो गया, अब मेरी तरफ देखेगा मेरा साथी, मेरा दोस्त। तो देखता हूं कि एकदम टांगे फैला दिया, टेलीविजन ऑन कर दिया, रिमोट से देख रहा है, चैनल बदल रहा है, अखबार भी देख रहा है, और सब जैसे थका मांदा है, अब कई चीज देख रहा है, लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रहा, अभी भी नहीं देख रहा है। चलो अभी नहीं देखा, रात को देखेगा, सोने से पहले देखेगा। देखता हूं इतना थका मांदा है कि सो गया। मैं सोचता हूं चलो आज नहीं देखेगा, कल तो देखेगा। ऐसी सारी रात वो सारा दिन हमको देखता रहता है। हम जरा एक बार गलती करके इसे ऊपर तो देख ले, नीचे तो बहुत देखते रहते हैं, ऊपर देख ले, बाबा आप वतन में कहां बैठे हुए होंगे, पता नहीं परमधाम में बैठे क्या करते होंगे, आप कैसे देखते होंगे, बिना आंख के भी कैसे देखते होंगे, लेकिन मैं आपकी तरफ नहीं देखता हूं बाबा, एक बार तो मैं देख लूं। तो आप हमारे जन्म जन्म के साथी हैं, आप हमारे पल पल के साथी हैं,
यहाँ जो मैं देखता हूँ ये तो कोई भी चीज दिखाई पड़ने वाली नहीं है, ये तो मिटने वाली है, वो तो कोई साथ देगा नहीं, और आप हमेशा साथ देते हैं, आपकी तरफ तो मैं देखता ही नहीं बाबा, बाबा मैं आपकी तरफ देखता ही नहीं। ऐसे एक बार भी प्यार से जरा उसको कह तो सही, उसको बोले तो सही, उसको आवाज तो दे तो सही, एक बार बाबा कहे तो सही। बाबा कहता है बोलते बोलते 1000 बार बाबा कहो। अरे हम 1000 बार नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ दिन भर में आप बाबा को जब याद करना हो, आपको बाबा की याद नहीं रही, मैं एक सरल सूत्र बता रहा हूँ। आप सवेरे उठते हैं ना तो बाबा की तरफ देखते हैं, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बाबा की 1 सेकंड याद किया, बाबा सामने है, बाबा ओम शांति, बाबा नमस्ते, बाबा गुड मॉर्निंग किया, और गुड मॉर्निंग करने के बाद दूसरा काम शुरू करता हूँ, तो इतने देखता हूँ बाबा भूल गया, फिर याद करता हूँ। मैंने क्या लक्ष्य बनाया कि बाबा को 8 बार नमस्ते करो, 8 बार, और तब तक करो जब तक लगे नहीं कि बाबा मेरी तरफ देख रहा है। भक्ति मार्ग में राम राम क्यों बोलते हैं? आपको जब भी बाबा को याद करने की जरूरत पड़े और एकदम संकल्प को रोकना हो ना, तो एक संकल्प को कई बार दोहरा दो, बाबा 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 नमस्ते, बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, बड़े मजाक में भी कीजिए लेकिन करके तो देखिए, बाबा अरे एक बार तो देखो, बाबा बाबा देख रहे हैं ना आप, बाबा आप मुस्कुरा रहे हैं जरूर, आप भले इसे दिखाई नहीं पड़े लेकिन आप हमको तो देख रहे हैं ना बाबा, बाबा ओम शांति, बाबा नमस्ते, बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा 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 बाबा, ऐसे करके देखिए, लगेगा थोड़ी से लगेगा ना, हाँ हाँ जी, बाबा कैसे देखें, हाँ कैसे देखें, आप कमरे में बाबा को हो कि बाबा को लाइट में देखें, बिंदु रूप में देखें, सबको अपनी अपनी स्थिति अपनी धारणा है कौन किसको अच्छा लगे, लेकिन मैं कहूंगा कि एक बाबा को निश्चित कीजिए, और वो बाबा होना चाहिए कि जिसे मैं आत्मा याद रहे और बाबा रहे, अगर ब्रह्मा बाबा को दिखाई पड़ना चाहिए तो आधा बाबा का फेस और बाबा में यहां पर यहां लाइट होना चाहिए, और बाबा को आप देख रहे हैं जिसे बाबा को आप देखें और बाबा फोर्स बीच में दिखाई पड़ता है, बाबा का फोर्स, ये बाबा को देखें तो ऐसे लगता है जिसे किरणों के माध्यम से बाबा अपने हाथ बढ़ाए, और हमारी अंतिम अवस्था तक भी लास्ट में भी एक बाबा की याद रहे, कहीं कुछ घटना घट रही है मैं कहता हूं बाबा बचाओ, तो उस समय ऐसे लगे जिसे बाबा को मैंने देखा, अपने बाबा को जो मैं रोज अभ्यास करती थी वो बाबा सामने आया और किरणों के हाथ से किरणों की बाहों से उसने बढ़ाया और मुझे बचा लिया। तो एक चीज करो, क्योंकि बाबा तो तमाम दिखाई पड़ेगा, एक बाबा का रूप तो ये है साकारी बाबा का, एक बाबा शिव बाबा निराकार भी दिखाई पड़ता है, एक गुलजार दादी में बाप दादा आते हैं वो भी दिखाई पड़ता है, आप तमाम बाबा को याद करेंगे तो बुद्धि भटक जाती है, याद सबको करें लेकिन एक को पक्का बनाएं कि जो आपको सोते भी याद दिखाई पड़े, यकाएक सडनली भी दिखाई पड़ दे, बाबा कहा जाए फट से बाबा दिखाई पड़ जाए, फट से बाबा दिखाई पड़ जाए, आपको सबसे अच्छा जो लगता हो उस चीज को बार बार देखें, बार बार अभ्यास करें, वही अभ्यास करें। मैं ज्यादातर क्या अभ्यास करता हूं, निराकार बाबा की, बहुत दिन का अभ्यास हो गया है इसलिए मैं बाबा को देखता हूं, किरणें अभी मैं बैठा हूं, सवेरे भी अमृत वेला बैठता हूं, बाबा इसे जिसे किरणें बाबा दिखाई पड़ रहा है, ज्योति स्वरूप बाबा, किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, ये अभ्यास करता हूं, चलते फिरते उठते बैठते ऐसे लगता है बाबा मेरा सब कुछ है, मैं आत्मा हूं, शरीर से विदेही होने का अनुभव करता हूं, बड़ा अच्छा अभ्यास हो जाता है। आप इसको अभ्यास करेंगे, हर एक भाई बहन चलते फिरते गाड़ी चला रहे हैं, आपको क्या करना है, ज्यादा सोचना कुछ नहीं, केवल दिखाई पड़े ज्योति स्वरूप बिंदु रूप बाबा यहां पर है, जैसे हमारी इस फोटो में वो जर देखिए, राजयोग की यात्रा स्वर की ओर दौड़, उसमें जितने भी योगी दिखाई पड़ रहे हैं तो शिव बाबा ऊपर है किरणें हैं, शिव बाबा ऊपर है किरणें हैं और आत्मा पे पड़ रही, तो ये जो आपका तार बंधा हुआ है शिव बाबा से ये निरंतर होना चाहिए, बाबा किरणें मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, ठीक है ना, ये पक्का करेंगे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये मैंने अनुभव में पूछा, अनुभव में किया है और वो मेरा अनुभव बड़े काम का आता है, मुझे बहुत मदद करता रहता है। तो मैं आपको बता रहा था अपने आत्मचिंतन के अभ्यास में कि आत्मचिंतन करता हूं, आत्ममंथन करता हूं, आत्मदर्शन करता हूं, आत्मविश्लेषण करता हूं, मैं अलग हूं शरीर और शरीर अलग है, मैं अलग हूं, ये शरीर सीप है, मैं आत्मा मोती हूं, ये शरीर दीप है, मैं आत्मा ज्योति हूँ, ये शरीर बाजा है, मैं बजाने वाला हूँ, ये शरीर गाड़ी है, यह रथ है, यह मोटर है, मैं इसका रथवान हूँ, मैं इसका संचालक हूँ, मैं संचालक हूँ, मैं चालक हूँ, ये मठ है, मैं इसमें महंत हूँ, ये शरीर कुटिया है, मैं इसमें संत हूँ, ये वृक्ष है, मैं इसमें फल हूँ, पुष्प हूँ, ये मेरी रचना है, मैं इसका रचता हूँ, ये शरीर डिब्बिया है, मैं इसमें हीरा चमक रहा हूँ, ये शरीर सर्प है, मैं इसमें मणि मोती चमक रहा हूँ, इसमें मणि हूँ, ये शरीर मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ, मैं ये धरणिया है, ये धरणी, मैं इसका धरणी हूँ, और इस तरह से ये अभ्यास करता हूँ, बड़ा अच्छा देर तक लगता है। ये शरीर मेरी राजधानी है, ये धर्म क्षेत्र का, कर्म क्षेत्र का, कुरुक्षेत्र है, और मैं आत्मा राजा, मैं आत्मा अर्जुन बैठा हूँ इस रथ पे, भगवान मेरा सारथी है और इस रथ को मैं चला रहा हूँ, इस शरीर को चला रहा हूँ। इस तरह का अभ्यास बहुत अच्छी समय तक काम में आता है। तो ये मैं आपको बताया कि जैसे मस्तक सिंहासन वाली बात बताई, ये अभ्यास करता हूँ। मैं थोड़ी हंसी की भी बात कर लूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ ये अभ्यास को, और एक लंबे समय तक ये प्रैक्टिस करता रहा कि मैं राजा हूँ, ये शरीर कर्मेंद्रियां हैं। और आजकल देखता हूँ जैसे कि मोदी सरकार आ रही है और जिस तरह से आजकल व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो मैं देखता हूँ आजकल तो राजा रहे नहीं, रानी कोई रहे नहीं, डेमोक्रेसी हो गई, पार्लियामेंट होता है, मंत्री होते हैं, तो मैंने भी अपने शरीर को पार्लियामेंट बना लिया। मैं आत्मा राष्ट्रपति हूँ, ये मन जो है प्रधानमंत्री है, ये सिर जो है शिक्षा मंत्री है, ये आंखें कानून मंत्री है, ये कान जो है संचार मंत्री है, ये चमड़ी जो है वो रक्षा मंत्री है, ये जांच प्रदूषण मंत्रालय है, मंत्रालय यहाँ जांच प्रदूषण मंत्री है, ये सूचना प्रसारण मंत्री है, ये जो मुख है, जो जीभ है, ये जो दांत है वो खाने पीने के उद्योग धंधे में लगा रहता है, ये उद्योग मंत्री है, और ये दिल वित्त वित्त करता है, वित्त मंत्रालय यहाँ है, ये हार्ट है वो गृह जो है गृह मंत्रालय यहाँ है, जो ब्लड सर्कुलेशन सारा जो है उस सप्लाई करता है, ये जो रोजगार मिनिस्टर है, अगर कुछ करेगा नहीं तो खाएगा क्या है? और ये टांगे जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, है? तो ये हमारी पूरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। इस तरह से बड़ा अच्छा हो जाता है और ये अभ्यास हमें बहुत अच्छा मदद करता है। इसलिए मैं, समय बहुत कम मिला है और पूरा समय भी हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक तो आप सचमुच इस घर को मंदिर बनाना चाहते हैं, तो पहली बात तो स्वच्छता बड़ी जरूरी है। हमारे ढेर सारे भाई बहने हैं, लेकिन उनको मैं तन की स्वच्छता उसके लिए भी चाहता हूं और उनके घर की भी स्वच्छता होनी चाहिए। आपको दो मंदिर बनाने हैं, एक तो आपका घर भी मंदिर बन जाए और दूसरा आपका ये तन भी मंदिर है जिसमें आप आत्मा रूपी मूर्ति विराजमान है, ठीक है ना? तो ये दोनों बराबर पैरेलल चलना चाहिए। तो स्वच्छता की दृष्टि से स्वच्छ हो, जिसके मन में परचिंतन, परदर्शन और परमत के ढेर सारे कीड़े नहीं है, पतंगे नहीं है, वो उड़ते रहते हैं आकाश में। ये सारे पर काट देने हैं और परोपकार के हैं, और परोपकार के और पर कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए चिंतन करें। ये दो पंख लगा ले जो बाबा कहते हैं, स्वचिंतन के पंख लगा ले और आप उड़ते रहे इसमें। तो एक तो स्वच्छता बड़ी जरूरी है, दूसरी पवित्रता बड़ी जरूरी है, और स्वप्न तक भी पवित्र हमारा बन जाए इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। आत्मचिंतन को जो मैंने आपको अभी बताया, जितनी आत्मिक दृष्टि का गहराई तक जाने का इसमें अभ्यास करेंगे, इसके खूब अच्छा करें। जैसे बाबा आते हैं और बाबा सामने बैठते हैं और बाबा एक एक चीज को, जैसे प्रकृति को अधीन करके बाबा हाथ उठाते हैं, कैसे हाथ उठाते हैं बाबा, कैसे देखते हैं बाबा, बोलते भी कैसे हैं। वहां से आवाज आई, बाबा ये हिसार वाले हैं, पंजाब वाले आए, तो बाबा क्या करता है? बाबा ऐसे सुनता रहता है, दृष्टि देता रहता है, उठो उठो हिसार वाले उठो, फिर बाबा बोलेगा उठो उठो। लेकिन हम जैसे होते हैं तो बोल दे कोई कि हिसार वाले हैं, अच्छा उठ जाओ जल्दी जल्दी उठ जाओ, सीधा ही बोल देते ना। लेकिन बाबा को बोलने में, सब चीज करने में, एक फल उठाता है तो बाबा कैसे उठाता है ऐसे, ऐसे लगता है जैसे कि पुरुष और प्रकृति किस तरह से उसका है। तो बाबा पल पल हमें इस शरीर के साथ कैसे हम काम करें, कैसे आत्मचिंतन करें, कैसे मैं पुरुष अलग हूं, ये प्रकृति अलग है, वो करके बताते हैं। ये अभ्यास हमारे चिंतन में, मनन में ये होना चाहिए। घरों में रह करके पवित्रता को आप फाउंडेशन बना लें, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी ऊपर जिम्मेदारी है, तो पवित्रता एक बहुत जरूरी है। दूसरी बात है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता का मतलब है प्रतीक जो होते हैं, घर को मंदिर बनाना है तो आपका घर अंदर से भी पवित्र तो रहे, स्वच्छ रहे, लेकिन बाहर से भी घर में स्वच्छता भी हो। घर में बाबा के कास्केट लगने चाहिए। आप सब भाई बहने जो भी हैं, जो ज्ञान मार्ग में हैं, उनको घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन एक छोटा सा एक कोने में बाबा का कमरा जरूर बनाए। बिना इसके बनाए कहें कि हम बाबा का घर मंदिर है, वो समझ में नहीं आता है। और बाबा के घर के कुछ चित्र हैं, प्रदर्शनी है, कुछ लगा दें जरूर घर में। जितना आप घर को सेंटर का एक माहौल सा बनाएं, घर में झंडा भी लगा लें, बोर्ड भी छोटा मोटा थोड़ा छोटा सा लगाएं। मैं वो नहीं कह रहा हूं गीता पाठशाला क्या है, वो तो बनता है तो ठीक है, लेकिन आपका घर घर न रहे मंदिर बन जाए, इसके लिए आपको आज के बाद एक आपको आइडिया दिया जा रहा है कि आप करें। ये जो बैज लगाने के लिए बाबा कहते हैं, ये बड़ा बैज लाभकारी है। जिन घरों में बाबा के कास्केट लगे होते हैं, जिनके पास बैज लगा हुआ होता है, जिन घरों में बाबा के झंडे लगे होते हैं, जिन घरों में पवित्रता का निवास है, और जिन घरों में मंदिर बन गया है, जो घर मंदिर बन गए हैं, विनाश काल में वो बहुत बड़े लाइट हाउस बन जाएंगे और सबका विनाश हो जाएगा, लेकिन वो घर जो है सुरक्षित रहेगा। ऐसे कि वो आपका घर नहीं होगा, वो बाबा का घर बन जाएगा, बाबा का मंदिर होगा। इसलिए मैं बाहरी प्रतीकात्मक रूप से भी कहूंगा कि आप अपने घर का रूप कुछ इस तरह दें कि ये न लगे कि ये फलाने का घर है, बल्कि ये लगे तो मंदिर है, जहां पर लोग आए और उनको शांति के कुंड का अनुभव। बाबा ने लास्ट मुरलियों में हमसे यही अपेक्षा रखी है कि बच्चे अब निर्विघ्न बनो, घर घर को इस तरह से बनाओ और वायुमंडल ऐसा बनाओ, वातावरण ऐसा बनाओ कि निर्विघ्न बन जाए, जहां लोग आए और उनको आभास हो कि यहां पर एक सेकंड के लिए ठहर जाएं, यहां अच्छी वाइब्रेशन आना चाहिए, यहां आना चाहिए। घर रहेगा तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन जैसे आपको मंदिर का आभास आएगा तो उनको लगता है। आपको समझ लेना चाहिए कि बाहरी रूप से वायुमंडल को भी हमें बड़ा शांतिपूर्ण बनाना चाहिए। जिन घरों में झगड़ा होता है, जिन घरों में मेरापन का होता है, संबंधों की टकराव हो रही है, वो घर मंदिर कैसे कहलाएंगे? वहां तो परिवार जिसे लगता है, मंदिर तो वो है जहां पर शांति के वाइब्रेशन आते हैं, जहां सुकून के दो पल मिलते हैं, वहां बैठे। तीसरी बात आपको जो है, चौथी बात वो ये है कि जो क्रियाकलाप है, आपको मधुबन की जो दिनचर्या है, यही दिनचर्या अपने घरों में लेकर के जाना है। जैसे आप मंदिर में ठाकुर जी को सुलाते हैं, ठाकुर जी को जगाते हैं, ठाकुर जी को पहनाते हैं, ठाकुर जी को नहलाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, ऐसे आप भी स्तन रूपी मंदिर के ठाकुर बन जाइए और इसको चलाइए, इस तरह से इसको संभालिए। एक तो आप अपने घर में, जो अपने घर को भी बनाए इस तरह से, और ये भी देखिए कि घर के रहने वाले, इस घर में बाबा है, इस घर में मैं स्वयं मूर्तिमान हूं, इसलिए मुझे इस घर में एक ऐसे ठाकुर जी को बहुत संभालना। जी बाबा कहते हैं ना कि जब मैं नहाता हूं तो मैं इस निश्चय में नहाता हूं कि जैसे मैं शिवलिंग के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूं, ऐसे बाबा जो है जिसे नहाता है, ऐसे मैं भी जैसे कि बाबा की अमानत को ये जो शरीर मिला है, ये मेरा पर निकल जाना चाहिए। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी महल माड़ी, मेरी साड़ी, मेरी पत्नी, मेरे पति, ये जितना भी मैं और मेरा है, यही गृहस्थी, और मैं मेरा से मुक्त हो जाना, यही मंदिर बन जाना है। इसलिए आज के बाद जिस चीज को हमने मैं करके इतना मैं किया है और मेरा बन गया है, लगता है अब जिसे घरों में क्या होता है, पति पत्नी का अधिकार इस तरह से आजकल लोग विक्षिप्त हो गया है, इस तरह रिश्ता बन गया है कि लोग समझते हैं कि पत्नी नहीं है, जिसे मेरी फैक्ट्री में बनाई गई, ऐसा हो जाता है संबंध, जबकि हमारा संबंध तो बराबर का होता है। और यहां पर बाबा के बनने के बाद तो हम एक राह के राही बन जाते हैं, हम सब भाई बहने बन जाते हैं, कितना अच्छा पवित्र रिश्ता बन गया है, और आत्मिक रूप से तो हम और सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए हमें जरूर मैंपन और मेरापन को एक शब्द में कहा जाए, यही मैं और मेरापन गृहस्थी का निर्माण करता है, और इसी से मुक्त हो जाना माना घर को मंदिर बना देना। मैंने ऐसे भाई बहनों को देखा है, ऐसे परिवारों को देखा है कि घर में रहते हैं, हम मधुबन में रहते हैं, मधुबन निवासी, हमारे पास सामान ज्यादा है कहीं उनसे, लेकिन उनके पास सामान इतना भी नहीं है कि वो कल भी रखें, आज खाए और उस कल को झंख है उसको गोरख कभो न भंख है। जो आज खाते हैं और कई दिनों के इंतजाम करते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी खा लेगी ये करेगी, ऐसा वो मंदिर नहीं होता। मंदिर तो होता है ट्रस्टी बनने के बाद। तो आप इस शरीर को ट्रस्टी बन के संभालिए, घर को निमित्त बन करके घर को संभालिए, लेकिन आपके बाल बच्चों की परवाह स्वयं बाबा करेगा, स्वयं जिसको आप देंगे वो कर लेगा। और इस तरह से अंत में आप इस तरह से एक और अपने ठाकुर जी को उठाना बिठाना सुलाना चलाना, आप मधुबन की जो दिनचर्या है उसको अपने जीवन में ला लें और निश्चित रूप से आपका घर मंदिर बन जाएगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आपके अंदर दातापन का भाव आ जाए, वरदानी बन करके सबको देने का हो। जैसे मंदिर में कोई जाता है तो उनकी मूर्तियों से झलक आती है, जिसे दे रही देवी दे रही। अब हम सबको लेने का संस्कार ना हो बल्कि देने का संस्कार हो, सबको देते जाए, कल्याण की भावना से भर जाए। जैसे समदृष्टि हो जाती है, मूर्ति के आगे जाते हैं और मूर्ति के सामने आते हैं तो मूर्ति से हमेशा प्यार का, स्नेह का, करुणा का, दया का, समभाव का ऐसा वाइब्रेशन आता है। ऐसे वाइब्रेशन हमको जो है सबको देने हैं। और अंत में मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताना चाहता हूं, और बात यह है कि घर बने मंदिर आपका तब मंदिर बन जाएगा जब आप जो है दाता बन जाएंगे। अब यहीं पर हम सब दाता बन रहे हैं ना, तो सतयुग में जो बनने वाले हैं, जो सतयुगी के दाता हैं, उनकी निशानी है कि वो सबको देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते रहते हैं, कभी लेने के भाव नहीं आता है, वो सतयुग के देवता बन जाते हैं। और त्रेता युग वाले होते हैं जो कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, वो त्रेता युग में चले जाते हैं। और जो द्वापर युग के देवता बनते हैं, द्वापर युग में देवता तो नहीं बनते हैं लेकिन बनने जाते हैं देवता, लेकिन द्वापर युग तक रहते हैं। वो कहते हैं मैं तुमको क्यों दूं, तुमने हमको क्या दिया है, तुम हमारे पास नहीं आते, हम तुमको क्यों देंगे, हम तुम्हारे पास क्यों जाएंगे। तो जो जितने का उतना करते हैं या तौलते रहते हैं या जो कभी कभी करते हैं तो वो तीसरे नंबर पे हो जाते हैं। और कलयुग के ठीक उल्टा सतयुग वाले होते हैं, वो देते रहते हैं और देने के बाद भूल जाते हैं, वो नंबर वन देवता होते हैं। और कलयुग वाले ठीक उसके उल्टे होते हैं, वो लेते रहते हैं लेते रहते हैं लेते रहते हैं और लेने के बाद भी भूल जाते हैं मैंने किसी का लिया अभी, ठीक है ना। तो अब आपको कौन सा देवता बनना है, आपको नंबर वन देवता बनना है। आप ठीक से देवता भी बन जाएं, तुम ही मंदिर बन जाओ, तुम ही पूजा बन जाओ, तुम ही देवता बन जाओ, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, ठीक है ना। इस तरह से एक अच्छी दिनचर्या के साथ आपसे मिलने का मौका मिला, इसलिए मैं कमलेश दीदी को और बहनों को जो आपको लेकर हिसार से यहाँ तक आई हैं और आपको एक अच्छी भट्टी कराने का अच्छा मौका दिया है, मैं बाबा की ओर से और सबकी ओर से एक अच्छी भट्टी की, सफलतम भट्टी के लिए, और एक अविनाशी भट्टी हो जिसमें आत्म अभिमानी बनने की तपस्या होती रहे, निरंतर याद की तपस्या होती रहे, संस्कार परिवर्तन की तपस्या होती रहे और संपूर्ण पावन बनने की तपस्या होती रहे। इस श्रेष्ठ संकल्प के साथ पुनः पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं।
तो आप सभी ने सतीश भाई को सुना, मन भी मंदिर हो, तन भी मंदिर हो, घर भी मंदिर हो। मंदिर देवालय कहा जाता है, यानी सभी स्वच्छ हो। और वैसे भी कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ऐसा बोलते हैं ना। स्वच्छता जो है भगवान के बाद दूसरी चीज क्या आती है, स्वच्छता। और ये बहुत जरूरी है, और जहां स्वच्छता का स्वच्छता है वहां भगवान का वास, ऐसा कहते हैं। तो हमने ये सब बातें सुनी और अति सुंदर पोइटिक शैली में आपको उन्होंने क्लास कराया। बहुत सारे पार्लियामेंट, दरबार, ये सभी बातें आपने सुनी, तो उन बातों को आप मनन चिंतन करके अपने पास, अभी आपके पास 4 बजे तक का टाइम है, भोजन भी कीजिए, साथ साथ मनन चिंतन भी कीजिए, रेस्ट भी कीजिए, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और बड़े दिल से हम सतीश भाई को शुक्रिया करते हैं जो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई।